परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द लिसनर्स एंड टू यू ऑल्सो, एंड अ वेरी वार्म वेलकम इन टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ परिक्रमा ऑन 100.1 FM। I am Shagun Chopra and with me today is my co-host Akarshita. And for you, we have a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, business tributes and much more, and all of this over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के नेताओं ने नए अध्यक्ष को बधाई दी।
इंडिया सर्च फॉर रिफॉर्म्स इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू एनेबल इट टू इफेक्टिवली मैनेज टुडेज ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स।
केन्या में नए कर प्रस्ताव के विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस कार्रवाई में 5 लोगों की मौत।
International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is being observed today.
और तैराकी में धीनी धी दे सिंधु तथा श्री हरि नटराज ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we will talk about the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, which is observed today, that is 26th of June, which was actually declared by the United Nations General Assembly each year as the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. An overindulgence of anything, even something as pure as water, can intoxicate. Do you agree with me, Akarshita?
Right? सही बात है, सही बात है.
By a resolution on 7 December 1987, the General Assembly decided to observe this day, that is 26 June, as the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, as an expression of its determination to strengthen action and cooperation to achieve the goal of an international society free of any kind of drug abuse. The theme of this year is The Evidence is Clear, Invest in Prevention.
क्या कहूँ, कैसे कहूँ मैं पीड़ा अपने अंतर्मन की, किस घड़ी में किस दिवस को मेरे हृदय शूल बैठा, दोष अब दूं भी तो किसको, खुद ही जीवन नष्ट करके लगता ज्यों अपनी डगर पर खुद ही काटे बो गया हूं, मैं कहीं पर खो गया हूं। जी हां, शायद यही स्थिति रहती है मादक पदार्थ या कहीं ड्रग्स का सेवन करने वालों की। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वे सभी उलझनों से पार पा लेंगे, अपनी परेशानियों और मानसिक व्यथाओं को भूल जाएंगे, लेकिन वास्तव में नशे की लत से वे खुद ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को उस नर्क में ढकेल देते हैं जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। हर साल 26 जून को नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को नशे की लत से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है, साथ ही अवैध दवा व्यापार के जोखिमों के बारे में भी जागरूक करना है। आजकल लोग शराब, ड्रग्स, गांजा और हेरोइन जैसे कई तरह के नशे कर रहे हैं। इनसे हो सकता है कि आपको कुछ देर के लिए अच्छा फील हो, लेकिन इनकी लत आपको कई तरह की परेशानियों का शिकार बना सकती है। एंड शगुन, बड़े ही नहीं बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। इस्तेमाल के साथ ही ड्रग्स के अवैध तस्करी के भी मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। इस दिन देश भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए कई रैलियां, गतिविधियां और अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए आज सुबह श्रीनगर में वॉक फॉर यूथ कैंपेन आयोजित किया गया।
Anakashita, in Manipur, Chief Minister N. Biren Singh flagged off a motorbike rally organized by the state police to address this issue.
Chief Minister N. Biren Singh in his address said that the present Manipur crisis is linked with the campaign against drug. He also said that 297 persons involved in drug use were arrested since the campaign was launched in 2018. According to the report of State Narcotics and Affairs of Border, 18,664 acres of land where poppy was planted were destroyed in the last 7 years under the campaign of war against drug in the state.
इस दिन को चिन्हित करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी भी 12 जून से अब तक पूरे देश में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मना रहा है। इस पखवाड़े के दौरान एनसीबी ने नशीली दवाओं के खतरे के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की हैं। सरकार ने नशा मुक्त भारत के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रहा है। इससे बड़े पैमाने पर सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में देशभर में नशा मुक्त भारत अभियान भी शुरू किया गया है।
And Akarshita, in this regard, over 342 integrated rehabilitation centers for addicts are also supported by the ministry. Mm-hmm. You know? Besides, the government has also set up a toll-free helpline for de-addiction, which is 144-1446 for providing primary counseling and immediate referral services.
Ji. नशे की आदत बहुत बुरी होती है शगुन, जो महज आपकी सेहत ही नहीं खराब करती बल्कि आपको आर्थिक तंगी का भी शिकार बना सकती है, आपके रिश्ते खराब कर सकती है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी तबाह कर सकती है। थोड़ी देर का सुकून पाने के लिए लोग इन सारी चीजों को दांव पर लगा देते हैं शगुन।
राइट, एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, इट इज एन इश्यू विच इज एडवर्सली अफेक्टिंग द सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री area concern. Dependence to any substance not only affects the individual's health but also disrupts their families and the whole society, right? Regular consumption of various psychoactive substances leads to dependence of the individual on these particular things. Some substance compounds may also lead to neuropsychiatric disorders, cardiovascular diseases, as well as accidents, suicides and all forms of violence also, some forms of, right?
नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभाव अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर हो सकता है। प्रभाव उपयोग की जाने वाली दवाओं के प्रकार पर भी निर्भर करता है। जैसे अल्पकालिक प्रभाव है कि जैसे शगुन, हृदय जो हार्ट बीट होती है आपकी, उसमें जो है चेंजेस आना, कभी बहुत ज्यादा फास्ट बीट करने लगना, कभी बहुत ज्यादा स्लो हो जाना, या फिर आपके ब्लड सर्कुलेशन में कभी बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो जाना या लो ब्लड प्रेशर हो जाना, या हार्ट अटैक, या फिर मनोविकृति। आप देखते हैं आजकल के युवा जो हैं वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी और इन सबसे पीड़ित होते हैं।
Yeah, और हंगर पैटर्न्स दे कीप चेंजिंग, राइट?
हाँ, वो भी जो है बदलती रहती है। और उनके दीर्घकालिक प्रभाव भी हैं, जैसे कि उनको कैंसर हो सकता है, एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं। जी, और इसीलिए मादक द्रव्यों के सेवन और निर्भरता को एक मनोसामाजिक चिकित्सक समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं हम चलते हैं कि आकाशवाणी से बातचीत में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक डॉक्टर लोकेश शिखावत ने बताया कि नशे की लत के शिकार युवाओं से निपटने में परिवार और समाज क्या भूमिका निभा सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
सबसे पहले तो माता पिता को, परिवार को हमेशा बच्चे पर नजर रखनी चाहिए, उसको मॉनिटर करना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए। परिवार में माता पिता को एक रोल मॉडल की तरह काम करना पड़ता है कि वो नशा नहीं करे, वो परिवार के अंदर नशे के बारे में एटीट्यूड जो है उनका नेगेटिव हो और परमिशन जो है हमारा परमिसिव एटीट्यूड ना हो। उसके साथ ही बच्चों से कम्युनिकेट करते रहें, बात करते रहें। अगर कोई भी लक्षण जो पहले हमने चर्चा की है, अगर वो कोई भी लक्षण नजर आता है, कुछ बदलाव अगर नजर आता है, तो उसी समय उसको पहचानना है और बिना देरी किए, क्योंकि बहुत बार देरी बहुत कर देते हैं कि कोई बात नहीं आजकल के बच्चे करते हैं, छोड़ते हैं। बिना देरी किए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करके उनको और काउंसलर्स या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट किसी से एक बार उनकी बात करवाना बेहद जरूरी है। अगर घर से पैसा चोरी हुआ है वो एक गंभीर विषय है। ऐसे विषय पे बच्चे को उसी समय से बहुत जरूरी है कि उससे बात करके, बजाय कि उसको डांटने की बजाय कि उसको और आइसोलेट करने के बजाय कि उसको और लोगों को, रिश्तेदारों को बताने के बजाय और बाकी लोगों को पता चले, उससे पहले उसको काउंसलर्स और उनके पास ले जाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण।
And also, the population belonging to the lower strata of the society are particularly exposed to drug abuse in India and use these as a form of relaxation agent. Most of the youth who get addicted to drug abuse, it is due to the fact that they started under the peer pressure. Jaise bachpan mein hui, you know, they start as part of the activities which they perform, right? Or even due to the isolation suffered at the adolescent level at the hands of parents or friends. So together, listeners, let us amplify our efforts to combat the global drug problem guided by the principles of science, compassion and solidarity. Through collective action and a commitment to evidence-based solutions, we can create a world where individuals are empowered to lead healthy, fulfilling lives, and we can make the world free of drug abuse.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। सबसे पहले भोपाल से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 5.5 करोड़ पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान की शुरुआत इंदौर से की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने इस अभियान के शुभारंभ के लिए केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह को मध्य प्रदेश आने का अनुरोध किया है। और ब्यौरा हमारे भोपाल संवाददाता संजीव शर्मा से।
मध्य प्रदेश में अभियान के तहत 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल और इंदौर से शुरू होने वाले एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कल दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर इस आशय की अपील की थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 5.5 करोड़ पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान की शुरुआत इंदौर जिले में 51 लाख पेड़ लगाकर की जाएगी। इंदौर में 7 जुलाई से 14 जुलाई तक कुल 51 लाख पौधे रोपे जाएंगे। दुनिया में एक साथ सबसे ज्यादा पौधारोपण करने का रिकॉर्ड बनाने की भी यहां तैयारी है। अभियान के अंतिम दिन 14 जुलाई को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम इंदौर में होगी। सांवेर रोड की रेवती रेंज में उस दिन एक साथ 11 लाख पौधे रोपे जाएंगे। इंदौर में बनने वाला यह रिकॉर्ड किसी भी शहरी क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ा पौधारोपण होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम बाकायदा पौधारोपण के लिए एक एक गड्ढे की गिनती करने के साथ पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी विशेषज्ञों की निगरानी में करेगी। इससे पहले असम में 9 लाख पौधे एक दिन में रोपे जाने का रिकॉर्ड बनाया गया था। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
In an effort to combat the widespread prevalence of sickle cell disease in Odisha's tribal regions, the state government has initiated an extensive screening and awareness campaign across 21 districts. This initiative, which began on World Sickle Cell Awareness Day on June 19, will run until July 3. Here is a report from Cuttack.
The health department has established numerous screening camps aiming to diagnose and identify individuals with sickle cell disease early. These camps are strategically located at primary and community health centers, ensuring accessibility for residents and remote areas. By conducting comprehensive screenings, the government hopes to compile accurate data on the prevalence of SCD and provide timely medical intervention to those affected. Parallel to the screening, a house-to-house campaign has been launched targeting 5 lakh families. Trained health worker and volunteers are engaging with community members. This grassroots approach aims to raise awareness, dispel myths and encourage individuals to participate in screening programs. Speaking to Akashvani Samachar, Professor Dr. Jayant Panda of Sri Ramchandra Bhanja Medical College and Hospital, Cuttack, said,
I want to tell you about a problem which makes the youth suffer much. The blood level comes down, the joints, the pain, there occurs jaundice, and it is known as sickle cell disease, where the hemoglobin chain becomes defective because of a hereditary autosomal recessive disease, and the person suffers lifelong. Now, our central government and the state government have taken a move for the awareness regarding prenatal diagnosis, regarding marital counseling and treatment of the patients to make their life better. So I appeal you that all of you should know what is sickle cell disease, and each person before marriage should know whether your partner suffers from that disease or not. And if suffers, in she is pregnant, you can test the disease in the mother's womb also. Unfortunately, the patient born with the trait of the disease, he can be consulted and take medicines to prevent the crisis or complications of bone pain and anemia. Let us fight it out together and get rid of it.
For Parikrama, this is Itishri Singh Rathore, Akashvani Samachar, Katak.
छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में जनजातीय लोगों के आस्था स्थलों के आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं रायपुर से हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला।
छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी समुदाय के लोग पेड़ों को काफी महत्व देते हैं और उनकी संस्कृति में पेड़ पौधों की रक्षा का भी बड़ा महत्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के बस्तर संभाग में आस्था के केंद्रों के आसपास हरियाली बिखेरने की मुहिम शुरू की जा रही है। आदिवासियों के आस्था स्थलों को देवगुड़ी और मातागुड़ी के रूप में जाना जाता है। आदिवासी जन इन पर अटूट आस्था रखते हैं और इन आस्था स्थलों के आसपास के वृक्षों को देवता के रूप में मानते हैं और इन पेड़ पौधों को संरक्षित रखने की परंपरा भी निभाते हैं। बस्तर संभाग के 7,000 से अधिक देवगुड़ी मातागुड़ी के साथ साथ 3,000 से ज्यादा वन अधिकार मान्यता पत्र स्थलों के आसपास पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत बस्तर संभाग के 7 जिलों में आस्था स्थलों के आसपास बारिश के मौसम में 5,00,000 से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान नीम, आम, जामुन, करंजी, अमलतास जैसे फलदार और छायादार पौधे लगाए जाएंगे। बस्तर कमिश्नर ने जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस अभियान का नोडल अधिकारी बनाया है। पौधारोपण की इस मुहिम में बैगा, सिरहा, मांझी, चालकी, गुनिया, गायता, पुजारी सहित सभी जनजाति समुदायों के जन प्रतिनिधियों को भी भागीदार बनाया जाएगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember social reformer and freedom fighter Sahajananda Saraswati, who died on the 26th of June 1950. A champion of the farmers, Saraswati was an intellectual, prolific writer and a revolutionary.
Sahajananda Saraswati was born as Navarang Rai on the 22nd of February 1889 at Ghazipur, Uttar Pradesh. He initiated the Kisan Sabha movement in Bihar in 1929 with the formation of the Bihar Provincial Kisan Sabha, BPKS. The Sabha mobilized peasants against the Zamindari attacks on their occupancy rights.
The All India Kisan Sabha, AIKS, was formed at the Lucknow session of the Indian National Congress in April 1936, with Saraswati as its first president and prominent leaders such as N.G. Ranga and E.M.S. Nambudiripad as members. The Kisan Manifesto was released in August 1936 and demanded abolition of the Zamindari system and cancellation of rural debts.
Saraswati organized the Bakasht movement in Bihar in 1937-1938. Bakasht means self-cultivated, and the movement was against the eviction of tenants from Bakasht lands by the Zamindars. The movement gained ground and the Bihar Tenancy Act and the Bakasht land tax were passed to secure farmers' rights. Saraswati also led the successful struggle in the Dalmia sugar mill at Behta. When Saraswati was arrested during the Quit India movement, Subhash Chandra Bose and the All India Forward Bloc decided to observe 28th of April as All India Swami Sahajanand Day in protest of his incarceration by the British Raj. Subhash Chandra Bose said,
"Swami Sahajanand Saraswati is, in the land of ours, a name to conjure with. The undisputed leader of the peasant movement in India, he is today the idol of the masses and the hero of millions. It was indeed a rare fortune to get him as the chairman of the reception committee of the All India Anti-Compromise Conference at Ramgarh. For the Forward Bloc, it was a privilege and an honor to get him as one of the foremost leaders of the left movement and as a friend, philosopher and guide of the Forward Bloc itself. Following Swamiji's lead, a large number of front-rank leaders of the peasant movement have been intimately associated with the Forward Bloc.
The mass leader of peasants, Sahajanand Saraswati, died on the 26th of June, 1950. AIR News salutes the great Indian.
We also remember revolutionary freedom fighter Jeevan Ghoshal, who was born on the 26th of June, 1912. A resident of District Chittagong, now in Bangladesh, Ghoshal was a member of the Chittagong Revolutionary Party and took a prominent part in the Chittagong Armory Raid on the 18th of April, 1930.
After the Chittagong Raid, he left the city but was arrested at Feni Railway Station on the 22nd of April, 1930. However, he managed to escape to Chandernagore with two other fugitives. M. Champion, the administrator of the French colony, informed his whereabouts to the British authorities in Kolkata.
On getting the information, Kolkata's police commissioner Tegart, along with a large police contingent, reached Chandernagore on 1st September 1930 and surrounded the revolutionaries' hiding place. In the exchange of fire between the police and the revolutionaries, Jeevan Ghoshal received fatal bullet injuries and died on the same day. We salute the great revolutionary.
We also remember Martyr Bahadur Khan, who participated in the First War of Independence in 1857.
He was captured by company troops in the course of their attacks and put on trial for desertion and mutiny. Bahadur Khan was sentenced to transportation for life with hard labor in irons. He died in detention on the 26th of June, 1858, in the Andaman Islands. AIR News salutes the brave son of the soil.
And now it's time to update you with what's happening in the business world today. India's equity benchmark indices, Sensex and Nifty, rose more than 0.5% today, aided by the substantial buying from the foreign institutional investors. The Sensex rose 621 points, or 0.8%, to close at 78,674. Nifty gained 148 points, or 0.62%, to settle at 23,869. In the global crude market, Brent crude is trading at $85.68 per barrel. WTI crude is trading at $81.57 per barrel when reports last came in. In the multi-commodity exchange for August contract, gold is trading at 71,305 rupees per 10 grams. Silver for July contract is trading at 86,941 rupees per kg when reports last came in.
श्रोताओं अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तैराकी में धनिधि देसिंधु और श्रीहरि नटराज ने यूनिवर्सैलिटी कोटा के माध्यम से पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इस संबंध में भारतीय तैराकी महासंघ ने घोषणा की। फरवरी में 14 वर्षीय धनिधि ने फिलीपींस में आयोजित 11वीं एशियाई ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में चौथा स्थान हासिल किया। धनिधि महिलाओं की 200 मीटर फ्रीस्टाइल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। उन्होंने वर्ष 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर, भारत और मलेशिया में आयोजित स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। वहीं 200 मीटर फ्रीस्टाइल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक शीर्ष तैराक नटराज ने पुरूषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
And in the ICC Men's T20 Cricket World Cup, Afghanistan will face South Africa in the first semi-final at Brian Lara Stadium in Taruba, Trinidad, tomorrow morning, while India will face England in the second semi-final match at Providence Stadium in Guyana tomorrow evening. Final match of the tournament will be played at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados on Saturday.
श्रोताओं अब समय हो चला है उन हस्तियों को याद करने का जिनका आज है जन्मदिन या फिर जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। इस क्रम में हम सबसे पहले याद करेंगे यश जौहर को। आज उनकी पुण्यतिथि है। यश जौहर अपनी फिल्म निर्माण के हुनर के साथ अपने नरम स्वभाव और नेक दिली की वजह से भी जाने जाते हैं। यश जौहर का जन्म अमृतसर में 6 सितंबर 1929 में हुआ। 50 के दशक में वो मुंबई आए और टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटोग्राफर की नौकरी करने लगे और यहीं उनका फिल्म प्रोडक्शन के साथ जुड़ने का जरिया बना और उन्होंने शशधर मुखर्जी से लेकर सुनील दत्त के प्रोडक्शन हाउस में काम किया। प्रोडक्शन हाउस में काम करते हुए 1976 में यश जौहर ने अपनी कंपनी खोली जिसका नाम था धर्मा प्रोडक्शन और इसके बैनर तले पहली फिल्म बनी दोस्ताना जिसने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। इसके अलावा उन्होंने अग्निपथ, दुनिया, डुप्लीकेट से लेकर गुमराह जैसी कई और फिल्मों का निर्माण किया। इन्हें 2004 में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।
मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा
And friends, it's also the birthday of Indian field hockey player Manpreet Singh Pawar. As the captain of the Indian field hockey team, Manpreet Singh Pawar has had a significant impact on the sports in India and around the world also. He led his team to a bronze medal at the Tokyo 2020 Olympics and has been recognized as one of the most talented players in the game.
आज 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रकांड विद्वान तथा महान कवि और उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती है। 1874 में प्रसिद्ध देश भक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की जिसे बाद में आनंद मठ नामक उपन्यास में शामिल किया गया। वंदे मातरम गीत को सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ था। उनकी शिक्षा बंगला के साथ साथ अंग्रेजी व संस्कृत में भी हुई थी। आजीविका के लिए उन्होंने सरकारी सेवा की परंतु राष्ट्रीयता और स्वभाषा प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। बंकिम ने साहित्य के क्षेत्र में कुछ कविताएं लिखकर प्रवेश किया। उस समय बंगला में गद्य या उपन्यास कहानी की रचनाएं कम लिखी जाती थी। बंकिम ने इस दिशा में पथ प्रदर्शक का काम किया। 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुर्गेश नंदिनी नाम का उपन्यास लिखा। रवीन्द्रनाथ ठाकुर बंग दर्शन में लिखकर ही साहित्य के क्षेत्र में आए। वे बंकिम को अपना गुरु मानते थे। उनका कहना था कि बंकिम बंगला लेखकों के गुरु और बंगला पाठकों के मित्र हैं।
And it's also the birthday of Ariana Grande, American singer, songwriter and actress. She began her career in 2011 with the soundtrack album Music from Victorious. Her various accolades include Grammy Awards, Brit Awards, Billboard Music Awards, and she also starred in the Nickelodeon television show Victorious, which premiered in the year 2010. Let's listen to this track, Thank You, Next.
Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm.
आज भारतीय गायिका और नर्तकी गौहर जान की जयंती है। वे दक्षिण एशिया की पहली गायिका थी जिनके गाने ग्रामोफोन कंपनी ने रिकॉर्ड किए थे।
Ah!
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शकुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।